मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 11 जून 2015 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल एक बार फिर से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में जो 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उनमें दाखिला लिया है। इन नौजवान साथियों के नाम हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी जो रांची से हैं, धर्मजीत सिंह बिजनौर से हैं, के एम पूजा दिल्ली से हैं, उत्तम जांगिर बाड़मेर राजस्थान से हैं, अजीत कुमार आप भी रांची से हैं, आशीष राजेंद्र दाही वासीम महाराष्ट्र से हैं और अर्जुन सूर्यवंशम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो सिद्धार्थ, धर्मजीत, के एम पूजा, उत्तम, अजीत, आशीष और अर्जुन आप सभी 7 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों मेरे इस स्वागत को आप बिल्कुल भी औपचारिक तरीके से न लें। मैं जब स्वागत करता हूं तो मेरे उस स्वागत में मेरा दिल भी शामिल होता है और निश्चित रूप से चूंकि मामला सिविल सर्विस की तैयारी का है तो दिमाग तो शामिल होता ही है। दोस्तों आज के मोटिवेशन वाले हिस्से को मैंने थोड़ा सा एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है और आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि चीजों में थोड़ा बहुत बदलाव भी आता रहे ताकि आपकी ऊब कम हो सके। और यदि ऊब नहीं भी हो रही है तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि रोचकता न केवल बनी रहे बल्कि बढ़ती भी रहे। मित्रों सिविल सर्विस के बारे में मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये शेयर करता हूं, उनसे कहता हूं, बताता हूं कि आप दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी एक लेंगे जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स से लेकर के और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, लेकिन इनका उपयोग सही मायने में जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर दिमाग में एक बात आती है कि फिर ये सब्जेक्ट पढ़ाए क्यों जा रहे हैं भाई, ऐसी चीजें पढ़ाई जाए कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद वो हमारे काम आ सके। जैसे डॉक्टर जो बनना चाहता है उसको डॉक्टरी पढ़ाई जाती है और जो इंजीनियर बनना चाहता है उसको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मित्रों जिस दिन आप इसके अंतर को समझ जाएंगे, इसके कारण को समझ जाएंगे, मैं समझता हूं कि उस दिन सिविल सर्विस की तैयारी के सही तरीके पर शायद आपकी निगाह टिक जाएगी। याद कीजिए 2 दिन पहले मैंने एक समुद्री किनारे पर बास्केटबॉल का उदाहरण दिया था जो बहुत ही खूबसूरत उदाहरण था और टेक्निक कितनी बड़ी चीज होती है उसका इतना जबरदस्त और तत्काल प्रभाव उस दिन मैंने पहली बार देखा और वो घटना मेरे दिल और दिमाग पर बिल्कुल चस्पा हो गई है। और सच पूछे तो मुझे सिविल सर्विस की तैयारी कराने के मामले में एक न केवल नई दृष्टि भी मिली है बल्कि मेरा भरोसा और भी अधिक सुदृढ़ हो गया है। दोस्तों देखिए सबसे बड़ा जो इसमें हिस्सा है वो जनरल स्टडीज का है। मैं आज इसी को लेकर के आपको मोटिवेशन की बात कुछ शेयर करना चाहूंगा। मैं अक्सर अपने जो क्लास में स्टूडेंट आते हैं और यहां तक कि मैंने कई बार अपने ऑडियो में भी ये बात कही है कि जनरल स्टडीज की तैयारी किताबों से कम और जिंदगी से ज्यादा होती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को समझना है तो इकोनॉमिक्स की किताबों से आप ये काम नहीं कर सकते। वहां से आप उसकी बेसिक्स को जान सकते हैं, दैट्स ऑल। इसके बाद आप इकोनॉमिक्स को समझेंगे अखबारों से, अखबारों को मैं जिंदगी के रोजमर्रा के घटनाओं का संकलन कहता हूं। वो किताबों में दर्ज जरूर होते हैं, पन्नों पर दर्ज जरूर होते हैं, लेकिन पन्नों में जो घटनाएं दर्ज हैं वो हैं जो एक दिन पहले इस धरती पर घटी हैं। तो वो एक तरह से जीवंत प्रयोगशाला है जो किताबें हैं। मैगजीन भी वही है, न्यूज भी वही है। और सच पूछे तो हम दुनिया सभी जगह के जीवन को जी नहीं सकते। आप भोपाल में बैठ करके न्यूयॉर्क के जीवन को जी नहीं सकते, लेकिन न्यूयॉर्क के जीवन के बारे में अगर कुछ बात अखबार में छपी है तो आप उसे जी सकते हैं। इसीलिए इनकी इतनी ज्यादा अहमियत है। मित्रों इसके थोड़े से अंतर को आप समझ लीजिए और यह थोड़ा सा अंतर आपकी तैयारी में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। वो अंतर यह है कि एक सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। व्हाट इज दिस जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज का मतलब है ज्ञान जो आप किताबों से हासिल करते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरल स्टडीज. हम किताबों में पढ़ते हैं, वो हमें नॉलेज देती है. किताबें हमें सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करती हैं. और जो स्टेजेज है नॉलेज, तो हम पहली क्लास से लेना शुरू करते हैं और सिविल सर्विस ने ग्रेजुएशन को एक मिनिमम लाइन बना रखा है. तो मतलब हम नॉलेज लेते चलते हैं, यानी कि एक तरीके से शुरुआत हम इंफॉर्मेशन से करते हैं, याद करते हैं, चीजों को हम अपने दिमाग में रखते हैं और धीरे 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 वो जो इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज बनते चले जाते हैं. देन कम्स द स्टेज ऑफ जनरल स्टडीज. और याद रखिए कि सिविल सर्विस के जो आपके पेपर हैं वो जनरल स्टडीज के पेपर हैं. यहां तक कि उसमें फोर्थ पेपर भी आपका जनरल स्टडीज का है, जिसमें इंटीग्रिटी वगैरह का पेपर है. चौथा पेपर जनरल स्टडीज का पेपर है. प्री के दोनों पेपर तो जनरल स्टडीज के पेपर हैं ही. आप कल्पना करके देख लीजिए, इंटरव्यू पूरी तरह से जनरल स्टडीज पर बेस्ड है, आपका एसे पूरी तरह से जनरल स्टडीज पर बेस्ड है. तो फिर नॉलेज का वहां कंट्रीब्यूशन है ही कितना है, एक्सेप्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट. और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी फिर जनरल स्टडीज का कंट्रीब्यूशन हो जाता है. तो अगर आप बहुत गहराई में देखेंगे तो जो सिविल सर्विस है वो पूरी तरह से जनरल स्टडीज पर ही बेस्ड है. और इसीलिए आपको जानना चाहिए कि ये जनरल स्टडीज क्या है और ये क्यों है. क्यों सिविल सर्वेंट से अपेक्षा की जा रही है जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज? क्या वो जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, इतने विचारशील और अनुभवी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे आईएएस का सिलेबस तैयार किया है, पैटर्न को तैयार किया, कमेटी ने बैठकर विचार किया है और सालों से ये बात चली आ रही है, और केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी लगभग लगभग थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है. तो आफ्टर ऑल इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सोची समझी रणनीति होगी, बात होगी. ऐसे थोड़ी है कि एटरेंडम किसी को रात में सपना आया और सुबह उसने पेश कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों. देन व्हाट इज जनरल स्टडीज? मेरी समझ से मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं कि किताबों से हम नॉलेज गेन करते हैं और जब हम उस नॉलेज को अपनी जिंदगी के चारों तरफ फैला हुआ देखते हैं तो फिर हम अपने उस नॉलेज को जो कुछ देखते हैं उस पर अप्लाई करते हैं, या जो हम देखते हैं उसके आधार पर कुछ नॉलेज निकालने की कोशिश करते हैं. वो दो तरफा चलता है. हम अपने नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं और जो कुछ घटना हो रही है वहां से फिर हम वो नॉलेज निकालने की कोशिश भी करते हैं. और जब हम ये वहां से कुछ नॉलेज निकाल लेते हैं तो आगे चल करके वो नॉलेज उस किताब में दर्ज हो जाती है. ये सेकेंड स्टेज होता है दोस्तों, जनरल स्टडीज. इसका मतलब हुआ कि जनरल स्टडीज इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रैक्टिकल एंड द थ्योरी. थ्योरी हमने किताबों से ली है और प्रैक्टिकल उसका जो एस्पेक्ट है वो जीवन है. अगर आपको इकोनॉमिक्स को समझना है तो आप बाजार को समझिए, आप दुनिया के व्यापार को समझिए. किताबों से आप इकोनॉमिक्स पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते. फिर अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं, तो फिर जनरल स्टडीज का कंट्रीब्यूशन क्या है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. यू आर 100% राइट. अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल आप सही करें कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नॉट एट ऑल. लेकिन मित्रों, जिंदगी गणित नहीं है. जिंदगी में कोई भी चीज दो और दो चार नहीं होती है. इसका मैथमेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है. और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आप जिंदगी के इस मैथमेटिक्स को समझ जाएंगे उस दिन ये जिंदगी आपको इतनी खूबसूरत लगने लगेगी, इतनी खूबसूरत लगने लगेगी दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता कि कोई भी कठिन से कठिन समय, घड़ी, संकट आपकी इस जिंदगी की खूबसूरती को आपकी आंखों से चुरा नहीं सकती. इतनी खूबसूरत है जिंदगी अगर आप जिंदगी के गणित को समझ लेते हैं तो. लेकिन फिलहाल यहां मुझे आपको जिंदगी का गणित नहीं समझाना है बल्कि कुछ और ही समझाना है कि आपकी जिंदगी सिविल सर्विस में शामिल हो सके. मित्रों, जनरल स्टडीज के बाद जो अगला चरण आता है और जिसकी शुरुआत सिविल सर्वेंट बनने के बाद होगी वो होगी जनरल सेंस से. जनरल स्टडीज के माध्यम से ही हमारे अंदर एक जनरल सेंस डेवलप होता है. जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं बोध डेवलप होता है। विजडम पर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि विजडम में फिर एक अलग तरीके की चीज हो जाती है, वो एक डिफाइंड वर्ड हो गया है, मैं बोध की बात कह रहा हूं। आपको एक समझ सही आने लगती है, समझदारी पैदा हो जाती है, उस समय आपकी किताब का नॉलेज किनारे चला जाता है और आपका जनरल स्टडीज भी बाहर चला जाता है। या आप ये कह लीजिए, अगर हम गणित के फार्मूले के अनुसार कहें तो जनरल नॉलेज प्लस जनरल स्टडीज इक्वलेंट टू जनरल सेंस, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज मिलकर के इन दोनों का जो समीकरण मिलता है, जब होता है तो जो समीकरण तैयार होता है दोनों के मिलने से, वो समीकरण होता है जनरल सेंस का। इसी जनरल सेंस को अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं आइडिया, फिर आपके दिमाग में आइडिया आने लगते हैं और फिर जब आप कलेक्टर बनते हैं तो उस आइडिया का उपयोग करते हैं कि कैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करेंगे, कैसे वहां की समस्याओं को सुलझाएंगे, कैसे दूसरी चीजों को हैंडल करेंगे, आइडिया। तो जनरल स्टडीज प्रोवाइड यू अल्टीमेट आइडिया। और दूसरी क्या बात होती है दोस्तों, केवल आइडिया ही नहीं, जब आप में किसी चीज का सेंस आ जाता है तो जैसे ही सेंस आता है वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बदलने लगती है, वो जबरदस्त पर्सनालिटी बनने लगती है। जैसे मान लीजिए कि आपको आइडिया आ गया कि यार आदमी किस किस तरीके से बिहेव करता है, हर आदमी तो एक तरीके से बिहेव नहीं करता है, उसका सबका व्यवहार अलग अलग होता है। चाहे हम अपने परिवार को ले लें, हमारे पिता अलग तरीके से बात करेंगे, उन्हीं के छोटे भाई चाचा हैं वो अलग तरीके से बात करेंगे, हमारे ताऊ हैं वो उन्हीं के भाई हैं लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल अलग है, अरे हम चार भाई हैं तो हम चारों का व्यवहार अलग अलग है, सबका व्यवहार अलग अलग है। तो जिस दिन आपके अंदर ये सेंस प्रिवेल हो गया कि सबका व्यवहार अलग अलग होता है और मुझे सबके व्यवहार के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना है, तो आपको नहीं लगता कि इस आइडिया ने आपकी पर्सनालिटी को बदल दिया, एक जनरल सेंस ने आपकी पर्सनालिटी को बदल दिया। और सिविल सर्वेंट बनने के बाद यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जाने कि जो सामने वाला आया है वो कौन है और उसके साथ आपको कैसे बिहेव करना है। आप एमपी एमएलए से उसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे जो आप गांव वाले से बात करेंगे। तो दोस्तों अल्टीमेट जो जनरल स्टडीज है वो जनरल सेंस में प्रोवाइड कन्वर्ट होती है और यही जनरल सेंस हमारी पर्सनालिटी को बनाता है। और जब पर्सनालिटी और आप समझ लीजिए आइडिया का कॉम्बिनेशन होता है तो मालूम है कि जिंदगी में फिर क्या चीज रह जाती है, जिंदगी में रह जाती सिर्फ एक चीज और वो होती है सक्सेस। और सक्सेस इन रियल सेंस, वो सक्सेस नहीं हेरा फेरी करके प्राप्त की गई सक्सेस नहीं। और जब आपको जिंदगी में सफलता मिल गई तो जिंदगी में संतोष आ गया, और जिंदगी में संतोष आ गया तो यही आनंद है और जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। मित्र कुल ये छोटी सी बात है, इसीलिए सिविल सर्विस में जनरल स्टडीज को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। और मित्रों शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे जो मैंने आपको कहा कि अब आप इस जनरल स्टडीज की तैयारी कैसे करेंगे, खासकर अब जो पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज मेरे पास जो वक्त है वो मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपको इसकी तैयारी के बारे में बताऊं कि आप जनरल स्टडीज की तैयारी कैसे करेंगे। और मैं डेफिनेटली इसी कंटिन्यूएशन में कल आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे अपने आसपास जो बिखरी हुई चीजें हैं उनको समेट कर एक बहुत सुंदर गार्डन बना सकते हैं। जैसा कि चंडीगढ़ में एक शायद नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, रॉक गार्डन है, जिसमें घर की जो फालतू की चीजें होती हैं, जो टुकड़े, कांच के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, पता नहीं क्या क्या, लोहे के टुकड़े, इन टुकड़ों को इकट्ठा कर करके किस तरह से एक खूबसूरत गार्डन बनाया गया है, प्रतिमाएं गढ़ी गई हैं और उन प्रतिमाओं में से जीवन झांकता है। हम अपने आसपास की चीजों से जनरल स्टडीज की तैयारी कर सकते हैं मित्रों, और ऐसा कैसे हो सकता है इसके बारे में मैं आप लोगों से कल बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल एक उपदेश सा दे करके आपको आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि अब आप जाने कि ऐसा होता है या नहीं होता है। मैं ज्ञान के इस क्षेत्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अगर मैं कोई बात कहता हूं और तो तभी कहता हूं जब मैं उसमें उस पर पूरी तरह से कन्विंस हूं, और फिर कन्विंस मेरे होने का मतलब है कि मैं दूसरों को भी कन्विंस करने की कोशिश करता हूं, सफल होता हूं या नहीं होता हूं ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस पर बात जरूर करना पसंद करता हूं। इस पर हम लोग आगे कल बात करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के ऑडियो में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को एआईआर न्यूज के बारे में कुछ एक अलग तरीके के व्यू देने की कोशिश की थी कि किस तरह से हर दिन के समाचार में दो तीन महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, लेकिन ये जो दो तीन महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, पता लगा कि दो तीन महीने के ही खबरों का एक तरह से विकास है, उसी का एक डेवलपिंग एंड मॉडर्न फॉर्म है, तात्कालिक रूप है। इसीलिए आप इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बोझ न बनाए कि रोज अगर दो तीन महत्वपूर्ण खबरें होंगी तो आपके लिए तो फिर ढेर लग जाएगा यूपीएससी की तैयारी करने में। नॉट एट ऑल मित्रों, जब हम किसी वजन को थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश करते हैं तो एक दिन आता है जब हम बहुत बड़ा वजन उठा सकते हैं, लेकिन यदि आप सीधे सीधे एक ही दिन उस बड़े वजन को उठाने की कोशिश करेंगे तो कोई डाउट नहीं कि आप उठा तो नहीं ही सकेंगे, बल्कि अपना कुछ नुकसान कर बैठेंगे, या तो हाथ लचक जाएगा, कमर लचक जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और आप बिस्तर पकड़ लेंगे। न्यूज सुनना मैं समझता हूं कि धीरे धीरे वजन उठाने जैसा है, ऑडियो गाइडेंस को सुनना धीरे धीरे वजन उठाने जैसा है। और ऑडियो गाइडेंस की एक खूबसूरती मैं जो मानता हूं दोस्तों वो ये भी है कि एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें सिर्फ न्यूज नहीं है, न्यूज के साथ व्यूज भी हैं और व्यूज के साथ साथ कुछ और भी दूसरी चीजें हैं जो इसे थोड़ा सा एक स्वादिष्ट सा बना देती हैं, थोड़ा सा टेस्टी बना देती हैं। तो मित्रों कल के न्यूज को लेकर के अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। आपकी जो सबसे बड़ी खबर थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी, वो थी केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है। मित्रों इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन चूंकि मेरा जो ऑडियो है इसका करेक्टर बड़ा डिफरेंट तरीके का है, इसका करेक्टर ये है कि इसको वो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं जो 15-15 दिन की आकर की क्लास अटेंड कर चुके हैं, वे भी स्टूडेंट सुन रहे हैं जिन्होंने तब से इसको सुनने की शुरुआत की है जब पहला ऑडियो आया था, और वो भी सुन रहे हैं जो आज इसे पहली बार सुनेंगे। तो बड़ी विचित्र सी एक तरह से टी मतलब कह लिए मेरा ऑडियो जो टारगेट ग्रुप है ऑडियो का वो बड़ा विचित्र सा है, तो मुझे सबको लेकर के चलना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मैं उन्हें दोहराना जानबूझ करके दोहराता हूं, ये जानते हुए भी कि मैं पहले ये बात बता चुका हूं, लेकिन इसे मैं जो मेरे पुराने जो श्रोता हैं वो इसे बियर करेंगे और मैं समझता हूं कि इसी के माध्यम से वो अपनी उस चीज को थोड़ी सी मांझ भी लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ये कैबिनेट है, कैबिनेट क्या होता है ये आप किताबों में आप देख लीजिएगा, उसके ऊपर मैं नहीं जाता। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है मित्रों, आप ये कह लीजिए कि ये सरकार की धुरी होती है, सरकार का मतलब ही है केंद्रीय मंत्रिमंडल, और प्राइम मिनिस्टर इन्हीं की मदद से अपना सारा काम करते हैं। तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो निर्णय लेता है, या मान करके चलिए वो सरकार के ही निर्णय हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों को आपको दो भागों में बांटकर देखना होगा। नंबर एक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, मान लीजिए कि उसे ये कानून बनाना है, दो तरह के कानून होते हैं अगर आप सामान्य भाषा में कहें, एक तो यह कि केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय लेता है और जो निर्णय लेता है उसे वो सीधे सीधे लागू कर सकता है। जैसे अभी उसने निर्णय लिया कि वो दालों की का आयात करेगा ताकि भारत में दालों की कीमत स्थिर रह सके, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल तुरंत लागू कर देगा, इसके लिए उसे संसद के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल इसके साथ ही साथ उसी बैठक में यह निर्णय लेता है कि उसे अब जो नाबालिग जो की जो डेफिनेशन है उसे 18 साल की उम्र से घटाकर के 16 साल करनी है, तो ऐसा नहीं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय लेते ही वो लागू हो जाएगा, नॉट एट ऑल, इसके लिए उसे संसद के पास जाना होगा और वहां से कानून पारित कराना होगा। लेकिन उसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से ही होगी, हवा में वो नहीं हो जाएगी, और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया भी है, मैं यहां उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। तो मित्रों इस प्रकार आप देखते हैं कि चाहे वो तुरंत लागू होने वाली बात हो या बाद में जाकर के कभी लागू हो, या हो सकता है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का वो निर्णय कभी लागू ही ना हो पाए। जैसे भूमि अधिग्रहण देखिए आप विधेयक को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, संसद के पास गया, अब वो संसद में अटका हुआ है, हो सकता है कि पारित भी हो जाए और हो सकता है कि पारित न भी हो, हु नोज। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों को आप सबसे वजनदार निर्णय मानिएगा और इसे दो भागों में बांटकर अलग अलग देखिएगा। अब कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए हैं अब हम उनको थोड़ा सा उसको विस्तार से देखते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इनसाइड करेक्टर्स को इन चीजों के नहीं जानेंगे तब तक आप सही मायने में उस प्रश्न में जो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और आप उत्तर दीजिए और अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कीजिए और आप क्या समझते हैं। सुनने में तो बड़ा सरल सा लगता है कि आप क्या समझते हैं, लेकिन वहां जो आपकी समझ होनी चाहिए वो समझ उस लेवल की समझ होनी चाहिए जो आपको सिविल सर्वेंट बनाने के लायक प्रूफ कर सके। वो समझ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सड़क चलते आदमी की समझ है। समझ तो हर विषय के बारे में हर एक की होती है, लेकिन उसके लेवल सबके एक जैसे नहीं होते। तो आपके लेवल में वो चमक होनी चाहिए समझ में, कि कॉपी जांचने वाला ये माने कि नहीं, इसकी समझ यार अच्छी है और इसको सिविल सर्वेंट बनाया जा सकता है। इसलिए आपके प्रश्न में जो दे देंगे, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, तो ये मत सोच लीजिएगा कि यार हम तो जो भी विचार लिख देंगे, जो भी राय हम व्यक्त कर देंगे, नंबर मिल जाएंगे। नॉट एट ऑल, लेवल वो होना चाहिए दोस्तों। और ये वो लेवल तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आपको इन सब की इनसाइड करेक्टर्स पर बहुत अच्छी पकड़ न हो। और ऑडियो गाइडेंस में मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किस तरह से इवेंट्स पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ बनवा सकूं। ये बात जरूर है कि एक दिन में ऐसा न आपके लिए संभव है और न मेरे लिए संभव है, और सच पूछे तो किसी और के लिए भी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में जादू जैसी कोई बात नहीं होती। कम से कम इस तथ्य पर तो मेरा यकीन है ही। तो मित्रों देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, केंद्रीय मंत्रिमंडल के नो डाउट कि जो हेड होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं आप कह लीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स माना जाता है, वो इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे कामकाज की देखरेख करता है, वो इन सारे सभी चीजों की व्यवस्था करता है। इसलिए कैबिनेट सेक्रेटरी इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स इन आवर कंट्री। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ निर्णय लिए हैं मित्रों, जिसमें सबसे एक जो इंपॉर्टेंट निर्णय है, केवल मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा, जो आपके ध्यान में होना चाहिए, खासकर सिविल सर्विस के लिहाज के दृष्टि से, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है, जो बहुत बड़ा फैसला है, वो ये कि जो मील चीनी के मील मालिक हैं, जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, उनको 6000 करोड़ रुपए जो बैंक बिना ऋण के देंगी, 6000 करोड़ रुपए का लोन देंगी और उस पर कोई ब्याज नहीं होगा। सॉरी, बिना ऋण के नहीं, मतलब बिना ब्याज का ऋण देंगी, उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। और ये जो 6000 करोड़ रुपए है, ये मील मालिकों को नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि मील मालिकों के माध्यम से ये उन किसानों को दिए जा रहे हैं जिन किसानों के गन्ने का भुगतान ये मील मालिक नहीं कर पा रहे हैं। राइट, अब आप देखिए कि ऐसा क्यों है। ऊपर से अगर आप सुनेंगे तो लगेगा यार ये अच्छा तरीका है, मतलब गन्ना खरीदा है मिल मालिकों ने, वो प्राइवेट आदमी है, उसने गन्ने को पेरा और उसकी चीनी बनाई और मार्केट में बेचा, उसने कमाई की, अब वो किसानों को पैसा नहीं दे रहा है तो सरकार उसके माध्यम से पैसा दिलवा रही है। जैसे चिटपट फंड वगैरह वाले मामले हैं, न्यूज में भी था, आपने देखा है कि उन्होंने पैसा ले लिया, अब उन्होंने पैसा लेकर के जहां भी लगाया होगा, अब वो पैसा वापस नहीं कर रहे, तो वो तो सब जेल में है। तो ये मील मालिक जेल में क्यों नहीं है, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन मित्रों निर्णय इस तरह से एक तरफा नहीं होते हैं, है ना। कोई भी जब आप निर्णय लेते हैं तो आप देखेंगे कि कितने सारे प्रेशर्स आपके ऊपर आने शुरू होते हैं। प्रेशर का मतलब ये नहीं कि कोई कह रहा है तभी प्रेशर, सोच के भी, थॉट्स लेवल के भी प्रेशर्स होते हैं। अब देखिए कि गन्ना किसानों से जुड़ी हुई घटना है, एक हमारा एक कृषि उत्पाद है, किसान गन्ना पैदा करते हैं और किसान गन्ना पैदा करने के बाद मिल मालिकों के पास बेचते हैं। अगर मिल मालिक मान लीजिए कि बहुत नुकसान में चले जाते हैं, वो प्राइवेट आदमी है, चलिए हम इस तरह से लेते हैं, वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसका उसकी जो गन्ने की मिल है वो बहुत नुकसान में चली जाती है, वो क्या करेगा, अपने फैक्ट्री को बंद कर देगा। जब वो फैक्ट्री को बंद कर देगा अब क्या होगा, किसान गन्ना पैदा करेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं है, या किसान गन्ना पैदा करना ही बंद कर देंगे, वो दूसरा कुछ और पैदा कर लेंगे। चलिए किसान अगर गन्ना पैदा करना बंद कर देते हैं तो क्या हम चीनी खाना बंद कर देंगे, हम तो चीनी खाएंगे ही, हम गुड़ खाएंगे ही, अब क्या होगा, बाजार को गुड़ और चीनी चाहिए तो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, चीनी और गुड़ हम बाहर से मंगाएंगे, बाहर से मंगाएंगे तो वो हमें हो सकता है महंगी भी पड़े और साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि हो सकता है क्या होगा ही कि हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, हम दूसरे देशों पर निर्भर भी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि हम गन्ना उत्पादन के मामले में या अल्टीमेट चीनी उत्पादन के मामले में स्वावलंबी बने। तो स्वावलंबी बनाने के लिए जरूरी है कि जो गन्ना और मील मालिक के बीच का जो यह संकट है, सरकार इसको सुलझाए। राइट फ्रेंड्स, तो इस सुलझाने के तहत ही सरकार ने निर्णय लिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, कि वो मील मालिकों को 6000 करोड़ रुपए देगी। मील मालिक ये पैसा बैंकों को वापस करेंगे, रियायत उनको ये दे दी गई है कि इस पर उन्हें ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो एक एक बहुत व्यावहारिक रास्ता सरकार ने निकाला है। इसमें मित्रों एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज थी जो छोटी सी बात कही गई थी कि इसमें यह पैसा सीधे सीधे मिल मालिकों को नहीं दिया जाएगा। देखिए शुरुआत हो गई उस जनधन योजना की जो कुछ महीने पहले 3 महीने पहले लगभग शुरू की गई थी। अब उसकी शुरुआत हो गई है कि जो मिल मालिक हैं वो बकायदे लिस्ट बनाएंगे कि उनको किन किन किसानों का कितना कितना भुगतान करना है। वो लिस्ट बैंकों के पास जाएगी और उसकी लिस्ट के साथ साथ उनका जो जनधन योजना का जो अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर भी दिया हुआ होगा और फिर जो बैंक है उस अकाउंट में सीधे पैसा डालेंगे। इसका मतलब है कि मिल मालिक यहां फिर बीच में कुछ हेराफेरी नहीं कर सकते हैं कि साहब, क्योंकि मिल मालिक हेराफेरी कर सकते हैं। मान लीजिए एक मिल मालिक ने 1000 करोड़ रुपए की लिस्ट बना के दे दी कि इन किसानों को है देना, उसको 500 करोड़ रुपए हैं, तो 500 करोड़ तो उसने किसानों को दे दिए और 500 करोड़ रुपए फिर उसने अपने पास रख लिए, उससे वो कुछ दूसरा फायदा कमा रहा है क्योंकि उसको उस पर ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। तो किसी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को बिना ब्याज का पैसा मिल जाए तो उसके लिए तो एक तरह से सोने की वर्षा हो गई, लेकिन वो यहां ऐसा नहीं कर सकेगा क्योंकि अकाउंट में पैसा जाएगा। तो मित्रों ये एक बहुत बड़ी शुरुआत जनधन योजना की हो रही है और आप देखेंगे कि ये किस तरह से इसका जो है क्रांतिकारी असर आगे चलकर के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होगा और सबसे बड़ा जो असर होगा वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर होगा, गरीबों के प्रति होगा। सरकार जो सब्सिडी देती है, जो और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम लागू करती है, वो उनमें जो सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार होता है डेफिनेटली उस पर बहुत बड़ा नियंत्रण इस जनधन योजना के तहत लग सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका एक छोटा सा आपको नमूना, एक ट्रेलर देखने को यहां मिल गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय था मित्रों कि दालों का भारत ने आयात करने का फैसला किया है, क्योंकि जैसा कि कुछ दिनों पहले, अगर 3-4 दिन पहले के आप ऑडियो को सुनेंगे तो मैंने बताया था कि किस तरह से अब जो मानसून कमजोर पड़ रहा है तो उसमें दाल और तिलहन इन दोनों की पैदावार पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। तो सरकार अभी से सतर्क है कि हमारा जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली दालों की मांग तो लगभग वही रहेगी। अगर कीमतें बहुत बढ़ गई डोमेस्टिक मार्केट में तब दाल की डिमांड थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अगर दाल की डिमांड कम होती है तो डेफिनेटली इसका रिलेशन फिर हेल्थ से होता है क्योंकि हमारे शरीर को एक प्रोटीन का तत्व चाहिए जो ज्यादातर हम दाल में ही लेते हैं। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी एग तक नहीं लेती है जो शुद्ध रूप से वेजिटेरियन है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी के चलते कितने सारे संकट खड़े हो जाते हैं। तो सरकार अभी से सतर्क हो गई है और दालों के आयात का उसने फैसला किया है ताकि बाहर से दाल आ जाए, भले ही सरकार को वहां थोड़े से महंगे में दाल खरीदना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार का काम है पूरी की पूरी देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से संयोजित करना कि देश के नागरिक अपने आप को बहुत इजी महसूस कर सके। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मित्रों कि सरकार जो इस तरह के निर्णय लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए हैं, ये केवल हमारे देश के ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय नहीं लिए हैं, हमारे देश की सरकार ही ऐसा नहीं करती है, बल्कि जब मैं यहां हूं और अमेरिका के बारे में जब मेरी बात हो रही है तो अमेरिका की सरकार भी ऐसे निर्णय लेती है कि किस तरह से वो अपने किसानों की मदद कर सके। ऐसे ढेरों उदाहरण मुझे सुनने को मिले हैं, लेकिन उनकी यहां चर्चा करना बहुत उपयोगी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको यह बता दूं कि यूएस जैसा डेवलप्ड स्टेट नेशन भी इस तरह से अपने किसानों की मदद करता है, मिल मालिकों की भी मदद करता है। मित्रों एक और भी था देखा आपने कि हम कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई खबर को देखें, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय है कि साउथ के जो 3 प्लांट हैं, जिस प्लांट है जिसमें यूरिया का उत्पादन होता है, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये यूरिया का उत्पादन कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि वहां कुछ क्राइसिस आ गई हो, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है, कि लग रहा हो कि इन्हें बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो अभी अपने उत्पादन को जारी रखेंगे ताकि हमारे यहां यूरिया की कमी न होने पाए, क्योंकि यूरिया की कमी होने का मतलब होगा सीधे सीधे यूरिया के कीमतों का बढ़ जाना और दूसरा होगा इसका फिर सीधे सीधे अनाज के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ना। तभी सरकार ने फैसला किया है कि नहीं, वो प्लांट अभी अपना काम करना जारी रखेंगे। इसके बाद मित्रों जो एक दूसरी जो मैं समझता हूं कि थोड़ी सी बड़ी खबर, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है आप पार्टी की सरकार से कि आप अपने यहां लोकायुक्त जल्दी से जल्दी नियुक्त कीजिए। आपको ध्यान होगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, जहां से उनका एक राजनेता के रूप में उद्भव हुआ है, वो अन्ना हजारे के आंदोलन से ही हुआ है और अन्ना हजारे ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा था लोकपाल विधेयक को लेकर। लोकपाल विधेयक और लोकायुक्त में थोड़ा सा अंतर है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आप पार्टी को चाहिए था कि वो जैसे ही सत्ता में आती है वो लोकायुक्त की नियुक्ति करे, कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही है वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है कि लगभग लगभग 8 MLA ऐसे हैं जिनके खिलाफ खबरें आ रही हैं, दायर हो रहे हैं और सुनने को चीजें मिल रही हैं। तो आप पार्टी बचना चाह रही है क्योंकि अगर लोकायुक्त नियुक्त हो जाता है तो MLA वगैरह की जांच शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने टाइम दिया है कि या तो 2 सप्ताह में या कुछ ऐसा समय दिया है कि या तो आप पार्टी लोकायुक्त नियुक्त करें, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ेगी। यदि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल आप पार्टी को चाहिए कि वो लोकायुक्त जल्दी से जल्दी नियुक्त करे, क्योंकि इसका जो उद्भव हुआ है, इसीलिए मैंने जानबूझ करके वो बात कही है कि चूंकि आंदोलन से ही चीफ मिनिस्टर जो अभी राज्य दिल्ली की सरकार के हैं वो आए हैं, तो उन्हें लोकायुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए, ये उनकी मांग है और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत दिक्कत भी आप पार्टी को होगी। लेकिन एक घटना के रूप में आपको आप इसे याद कर सकते हैं या इसे ले सकते हैं। एक अच्छी खबर ये भी थी मित्रों कि मई में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसकी वसूली में काफी वृद्धि हुई, लगभग 30% तक की वृद्धि हुई है। एक अच्छी खबर हो किसी भी नेशन के लिए हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में जब वृद्धि होती है तो सीधी सी बात है कि देश की आय बढ़ती है, और जब देश की आय बढ़ती है तो उसका उपयोग कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए ही होता है। एक अच्छी खबर है। एक और छोटी सी खबर है मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, सेंसेक्स को लेकर के था कि अब पहली बार कई दिनों के बाद पहली बार का लगभग 360 अंक शेयर मार्केट बढ़ा है, और शेयर मार्केट का बढ़ना हमेशा एक अच्छी घटना मानी जाती है आर्थिक विकास की दृष्टि से। तो शेयर मार्केट क्यों बढ़ा, उसमें एक वर्ड आया था शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, मैं बहुत डिटेल में जाने के लिए तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये बता दो, शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि लोग एडवांस में शेयर बेच देते हैं लेकिन फिर उस शेयर की डिलीवरी नहीं दे पाते, तो ऐसे समय में फिर वो मार्केट से शेयर खरीद करके उसकी डिलीवरी देना चाहते हैं। तो वो जो शॉर्ट पड़ गए हैं, है ना, जो शेयर कम पड़ गए हैं उसको कवर करने के लिए जब वो मार्केट से शेयर खरीदना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि मार्केट में उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है वैसे ही उस शेयर की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट और सेकेंड बैच के जो स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि मैंने पूरे इकोनॉमिक्स जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है उसकी थ्योरी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को केवल डिमांड और सप्लाई के थ्योरी के आधार पर समझाने की कोशिश की थी, और यदि उसे वो यहां भी अप्लाई कर देंगे तो शेयर मार्केट के बारे में अभी जो शेयर मार्केट बढ़ा है बड़े आराम से उनकी समझ में वो बात आ जाएगी। एक अंतिम बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, और वो ये कि आपने न्यूज सुनी कि मानसून आ गया है। इस तरह के जब हम न्यूज सुनते हैं तो ठीक है, मानसून आ गया है, कहीं गर्मी बढ़ रही है, कहीं थोड़ी सी राहत मिल रही है, वो एक अलग बात है, वो तो तात्कालिक घटना है, आपकी सिविल सर्विस की तैयारी से सीधे मायने नहीं रखती। लेकिन उसमें जो वर्ड्स यूज करते हैं मुझे लगता है कि वो आपको एक बार अपने मैप में देख करके रिपीट कर लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो आप देखिए कि एक दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होती है। फिर आप देखिए कि वो कहेंगे तटीय कर्नाटक क्षेत्रों में बारिश हो रही, तो तटीय कर्नाटक क्या है, कौन कौन सा एरिया तटीय कर्नाटक में आता है। फिर कहेंगे अंदरूनी इलाकों में वर्षा होगी, फलाने फलाने के अंदरूनी इलाकों में, तो उसको लोकेट कीजिए कि अंदरूनी इलाके क्या हैं। फिर कहेंगे मैदानी भाग, पहाड़ी क्षेत्र, तो यह चीज आपके दिमाग में होने चाहिए कि मैदानी भाग उसका कौन सा है, उसका पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है। तब आप देखेंगे कि आपके दिमाग में कितनी चमकदार तस्वीरें इन चीजों को बनेंगी, आपकी समझ कितनी गहरी होंगी, और दोस्तों आप चमत्कृत रह जाएंगे कि इन सब के माध्यम से जो जनरल स्टडीज है और बाद में जो जनरल सेंस है वो कितने जबरदस्त रूप से आपके अंदर प्रिवेल कर रहा है। और जब आपको ऐसा अनुभव होने लगे आप समझ लीजिए कि आप सिविल सर्वेंट बनने लायक हो गए हैं। और मित्रों, अगर सिविल सर्वेंट नहीं भी बनेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे उसमें आप बेहतरी करेंगे, क्योंकि वो जनरल सेंस आप में प्रिवेल कर गया है। और ये कैसे हो सकता है इसके बारे में हम लोग कल के मोटिवेशन वाले पार्ट में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आपकी इजाजत चाहूंगा, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।